अंशु आकर बेड पर चढ़ी और आरवी की गर्दन पर अपनी छोटी छोटी बाहों को लपेटते हुए उसके सीने से आ लगी। आरवी ने भी उसको अपनी बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, हमारा बच्चा आज इतनी सुबह सुबह उठ गया। अंशु ने उसके सीने से सर बाहर निकालकर अपनी छोटी छोटी आंखों को टिमटिमाते हुए उसको देखते हुए कहा, बेबी ने मम्मा को बहुत मिस किया। डैडी ने कहा मम्मा इल है, इसलिए बेबी ने मम्मा को तंग नहीं किया और डैडी के पास नीनी नीनी कर ली। पर बेबी को मम्मा की याद आ रही थी, इसलिए बेबी जल्दी से उठकर मम्मा के पास आ गई। मम्मा, अब आप ठीक हो गए ना? अब आप बेबी को अकेला नहीं छोड़ोगे ना? उस नन्ही सी बच्ची का प्यार, अपनापन और फिक्र देखकर आरवी भावुक हो गई और उसके बिखरे बालों को अपनी हथेलियों से संवारते हुए बोली, नहीं बेटा, अब मम्मा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। अब मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई हैं, क्योंकि उनकी प्रिंसेस उनके पास आ गई है और अब मम्मा प्रिंसेस को हमेशा अपने पास रखेगी और ढेर सारा लव भी करेंगी। ये कहते हुए उसने एक बार फिर प्यार से उसके चेहरे को चूम लिया। अंशु उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसके सीने से चिपक गई। आरवी कुछ पल उसको अपने सीने से लगाए बैठी रही। कल से लेकर अब जाकर उसको कुछ सुकून महसूस हुआ था। फिर उसने टाइम देखा और उसको अपनी गोद में उठाए बेड से नीचे उतरते हुए बोली, चलो बेटा, मम्मा आपको रेडी कर देती है। अंशु ने झट से हामी भर दी। आरवी ने अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना गम, अपनी तकलीफ सब अपने दिल में छुपा ली और अंशु को लेकर वहां से चली गई। शान को भी उसका मन बहलते देख कुछ राहत मिली और उसके रूम से जाने के बाद वो रूम में आया और नहाने चला गया, क्योंकि आरवी के आने से पहले उसको घर से निकलना था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो जल्दबाजी में घर से निकल गया। आरवी अंशु को स्कूल के लिए तैयार करके कमरे में आई तो हवाओं में शान की खुशबू घुली मिली, पर वो कहीं नज़र नहीं आया। उसकी आंखों में नमी तैर गई, जिसको छुपाते हुए वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। मन नहीं था आज उसका कहीं जाने का, और सचती पहले ही नहीं थी। फिर आज घर पर ही रहना था और मन भी उचाट था, तो उसने फीके कलर का सूट डाला और बस मांग में ज़रा सा सिंदूर लगाकर रूम से बाहर चली आई। उसका रुख सीधी किचन की तरफ हुआ। हॉल में मौजूद अर्पिता जी ने उसका हालचाल लिया तो वो मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान के पीछे का दर्द वो देख गई और खामोश हो गई। आरवी ने ब्रेकफास्ट बनाने में कुछ मदद की, फिर सब नाश्ते पर बैठ गए। छाया का उसके प्रति व्यवहार भी सामान्य रहा और अर्पिता जी ने भी कुछ खास सवाल जवाब नहीं किए। बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं था, पर आरवी की हालत उनको कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुभाष जी और सुयश जी दोनों ने उससे सवाल किए तो आरवी ने मुस्कुराकर ठीक है, बस तबीयत थोड़ी खराब है कहकर बात टाल दी। अंशु को नाश्ता करवाते हुए सबको दिखाने के लिए उसने भी बेमन से नाश्ता किया। फिर आज अंशु को लाट करने के बाद ड्राइवर के साथ उसको स्कूल भेज दिया। अंशु ने भी जिद नहीं की, क्योंकि उसको अपनी मम्मा की फिक्र थी। सुयश जी भी निकल गए। आरवी ने सुभाष जी की मालिश की, उनको दवाइयाँ दी, कुछ देर उनके और अर्पिता जी के साथ बैठी भी, पर चेहरे पर उदासी ही रही। फिर वो अपने कमरे में चली आई। एक बार फिर कल की गई विहान की हरकतें, उसकी दी धमकियाँ और शान के कड़वे शब्द उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगे। आंखों में नमी उतर आई, पर आरवी ने उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। बस बेड के क्राउन से टेक लगाए गुमसुम और उदासी बैठी रही। रश्मि को तैयार होने में और फिर ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई थी। नीचे हॉल में ही उसको अर्पिता जी और सुभाष जी मिल गए। उसने दोनों को नमस्ते किया, हालचाल पूछा, फिर आरवी से मिलने की बात कही, पर ये नहीं बताया कि शान ने उसको बुलाया है। उसको देखकर अर्पिता जी को राहत महसूस हुई कि आरवी अपना मन उसके सामने हल्का कर लेगी, और यही सोचकर उन्होंने रश्मि को आरवी के रूम में जाने को कह दिया। रश्मि को ये बात ज़रा अजीब लगी कि आरवी घर में है और रूम में घुसी हुई है, पर अजीब तो उसको शान का उसे यहाँ बुलाना भी लगा था, और अर्पिता जी के तनाव भरे चेहरे ने भी उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था, और उसके सवालों का जवाब आरवी के पास जाकर ही मिल सकता था, इसीलिए वो मुस्कुराकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। आरवी के रूम का दरवाज़ा खुला था और वो अपनी ही सोच में गुम थी, जब उसके कानों में रश्मि की आवाज़ पड़ी, हाय जाने मन। आरवी एकदम से अपने ख्यालों और दर्द से बाहर आई। आवाज़ की दिशा में नज़र घुमाई तो सामने से रश्मि उसके तरफ ही बढ़ी चली आ रही थी। आरवी उसको यहाँ देखकर हैरान भी हुई और खुश भी, पर रश्मि के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। हालांकि जिस्म पर मौजूद निशान कपड़े से छुके हुए थे, पर उसकी लाल सूजी हुई आंखें उसका दर्द बयां कर रही थीं। चेहरा एकदम मुरझाकर पीला पड़ चुका था। रश्मि जल्दी से आरवी के पास चली आई और उसके चेहरे को अपनी हथेली से छूते हुए चिंता भरे स्वर में बोली, ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? क्या हुआ है तुझे? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी और आज इस हाल में? तू ठीक है ना? कोई बात है तो बता मुझे, मैं आ गई हूँ तो सब ठीक कर दूंगी। रश्मि परेशान सी बोले जा रही थी, वहीं उसके सवाल सुनकर आरवी का सब्रब जवाब दे गया। वो उसके गले से लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। रश्मि अब और ज्यादा परेशान हो गई थी। उसकी पीठ सहलाते हुए उसने बहुत कोशिश की आरवी के इस तरह टूटने के पीछे की वजह का अंदाजा लगाने की, पर कामयाब नहीं हो सकी। आरवी का रोना अब भी जारी था। रश्मि कुछ देर तक उसकी पीठ सहलाते हुए उसको शांत करने की कोशिश करती रही और फिर उसको खुद से अलग करके उसके आंसुओं को अपनी हथेली से पूछते हुए बड़े ही प्यार से बोली, आरवी शांत हो जा, मैं हूं ना यहाँ। चुप हो जा बिल्कुल, आराम से बता मुझे क्या हुआ है जो तू इस तरह रो रही है। देख मुझे चिंता हो रही है तेरी, तो सच सच बता दे क्या बात है, क्या जीजू की किसी बात की वजह से तू इतनी दुखी है। रश्मि का सवाल सुनकर आरवी कुछ पल खामोश सी नम आंखों से उसको देखती रही। उसके बाद उसने उसको कल जो भी हुआ और शान ने जो भी कहा और किया सब बता दिया और सिसकने लगी। जहां उसकी बात सुनकर और विहान की हरकत के बारे में जानकर रश्मि का खून खौल उठा, चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। पर शान की कही बातें सुनकर उसका सर चकरा गया। वो समझ रही थी कि क्यों किया उसने आरवी के साथ इतना बुरा व्यवहार, पर उसके पीछे की वजह नहीं समझ पा रही थी और उसके वजह से आरवी हर्ट हुई थी, इसलिए गुस्सा तो उसको शान पर भी कम नहीं आ रहा था। अगर अभी वो उसके सामने होता तो उसका सर ही फोड़ देती, पर फिलहाल उसके लिए इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी था आरवी को संभालना, तो उसने अपना ध्यान उस पर लगा लिया। आरवी को अपने गले से लगाए वो उसको सांत्वना देती रही। काफी देर रो लेने और अपने मन के गुबार को बाहर निकाल देने के बाद आरवी कुछ शांत हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और रश्मि से अलग होते हुए बोली, अब ठीक हूँ मैं, तू चिंता मत कर मेरी, और बता कि आज सुबह सुबह यहाँ अचानक कैसे आ गई। आरवी की बात सुनकर रश्मि को याद आया कि कैसे शान ने उसको यहाँ आने को कहा था, जिसकी वजह वो अब समझ पाई थी, पर उसने आरवी को ये बात नहीं बताई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, रिहर्सल एक हफ्ते तक नहीं होने वाली तो छुट्टी थी, काम के बीच तो हमें बातें करने का मौका मिलता नहीं है, बस इसीलिए सोचा कि तेरे पास आ जाया जाए और सारा दिन साथ में बिताया जाए, खूब बातें की जाए और मस्ती मजाक भी चले, तुझे तो कोई एतराज नहीं? बल्कि मैं तो तुझे यहाँ देखकर खुश हूँ और अब तुझसे बात करने के बाद काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ।
आरवी फीके से मुस्कुरा दी तो रश्मि भी मुस्कुरा दी। उसने अब आरवी का मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी, उसको अपने साथ नीचे ले गई और हंसी मजाक चलने लगा। जो उदासी का माहौल घर में बना था वो रश्मि के आने से दूर हो गया था। दोपहर कब हुई किसी को पता ही नहीं चला। अंशु के आने पर सबने साथ में बातों के बीच लंच किया। अंशु भी रश्मि को देखकर खुश हो गई। अंशु उसके साथ मस्ती करते हुए सो गई। बाकी सब भी आराम करने चले गए, पर रश्मि और आरवी की बातें होती रहीं। वो सबके साथ हंस बोल रही थी, पर मन में कितना दर्द छुपा था वो ही जानती थी। उस पर शान ने दिन भर में एक बार भी उसकी खोज खबर नहीं ली, ये बात भी उसको चुभ रही थी। शाम हुई तो रश्मि कल आने का कहकर चली गई। आरवी अपने रोज के कामों में लग गई, या ये कहें कि अपना मन बहलाने के लिए खुद को व्यस्त कर लिया। रात हुई, सबने डिनर किया, पर शान की कोई खबर नहीं थी। अब सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। अंशु को सुलाने के बाद आरवी अपने रूम में चली आई और दिन में सबके बीच जिस चेहरे पर हंसी और मुस्कान थी, अब वहां गहरी खामोशी और दर्द था। रात के करीब 12 बजे शान ने कमरे में कदम रखा और नजरें सीधे बेड पर मौजूद आरवी पर चली गईं। आरवी उसका इंतजार करते करते बेड के क्राउन से टेक लगाए हुए ही सो चुकी थी। एकदम उदास, मायूस, बेजान चेहरा और गालों पर बने आंसुओं के निशान शान के मन को बेचैन कर गए। जो उदासी आरवी के मुखड़े पर थी वो शान के चेहरे पर झलकने लगी। वो सधे कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। शान ने चंद कदमों की दूरी पर मुश्किल तय की, क्योंकि आरवी की हालत उसके आगे बढ़ते कदमों को रोक रही थी। कुछ सेकंड बाद वो आरवी के पास खड़ा उसके उदास मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था। इस उदासी की वजह वो बखूबी जानता था। कहीं ना कहीं उसके इस दर्द और आंसुओं के लिए वो भी जिम्मेदार था। चाहे वो विहान का दिया जख्म हो या उसके शब्दों के दिए घाव, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल था। विहान के इरादे पहले से जानता था वो, फिर भी आरवी को सुरक्षित नहीं रख सका, ये उसकी गलती थी जिसके गिल्ट में वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। और जब वो पहले ही दर्द में थी तब अपने कड़वे शब्दों के बाणों से उसके तन के साथ मन को भी घायल कर दिया। उसको उसके प्यार की जरूरत थी, पर मन में प्रेम का अथाह सागर लिए उसने उसको प्रेम के एक कतरे तक के लिए तरसा दिया। उसके प्यार भरे दिल को इतनी निर्ममता से तोड़ दिया कि उसके साथ वो खुद भी टूटकर बिखर गई। जब उसको उसके सानिध्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब उसने उसको और उसके प्यार को धुतकार कर खुद से दूर कर दिया। उसको अपनी नफरत की आग में जलाया। भले ही आरवी से दूर रहने के उसको तकलीफ देने के पीछे उसकी नीयत बुरी नहीं थी, पर कर तो गलत ही रहा था उसके साथ, जिसका एहसास उसे था, पर मजबूर था वो, और उस मजबूरी को हर कोई नहीं समझ सकता। टू बी कंटिन्यूड।